समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे। Hello, 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 friends. Sunday morning greetings to all you lovely folks tuned into our magazine show, Aaj Savere, on FM Go and the Akashwani Network. This is yours truly, Subhadra, and joining me is my co-anchor, Devendra Tripathi. Good morning, Devendra.
Namaskar, Subhadra. और नमस्कार सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के आज सवेरे प्रोग्राम में न्यूज मैगजीन में। और आज 20 जुलाई है, दिन रविवार, और इस सुंदर से गीत के साथ और सुभद्रा ने जैसा कि इंट्रोडक्शन दिया कि इस खूबसूरत सुबह और उसी तरह से खूबसूरत दिन की उम्मीदों के साथ हम ये आज का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं।
Yes, we begin with some news headlines.
जी,
Government has convened an all-party meeting today ahead of monsoon session of Parliament beginning tomorrow. During the meeting, government will seek cooperation from all political parties to ensure smooth functioning of both houses of Parliament. We have more from our correspondent.
The monsoon session will begin from the 21st of this month and continue till 21st of August. During the session, there will be a total of 21 sittings of both houses. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that the government is ready to discuss important issues to be raised in the Parliament. He said, besides important legislations including Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2025, the National Sports Governance Bill 2025 and the Merchant Shipping Bill 2024 are expected to be taken up for discussion and passage.
कई बिल्स हैं जो इस सत्र में आएंगे, जैसे शिपिंग बिल है, पोर्ट्स बिल है, मर्चेंट बिल्स है, स्पोर्ट्स का बिल है और जन विश्वास बिल है, एजुकेशन का, कई महत्वपूर्ण बिल्स हैं जो इस मानसून सत्र में आने वाले हैं।
Ahead of the session, a meeting of the leaders of the opposition, India Bloc, was held yesterday via video conferencing to finalize their strategies. During the meeting, a consensus was made among the parties to raise issues like Pahalgam terror attack and Operation Sindoor. With Anand Kumar, Adarsh for Akashwani News, Delhi.
कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग इश्यू बिफोर पार्लियामेंट और संसद के समक्ष मुद्दे पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट कार्यक्रम आकाशवाणी के रेनबो और अतिरिक्त चैनलों तथा संसद के समक्ष मुद्दे कार्यक्रम आकाशवाणी के एफएम गोल्ड और अतिरिक्त चैनलों पर आज रात 9:30 बजे से 10 बजे तक सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे यूट्यूब चैनल newsonair ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा।
Odisha government has decided to launch a special program, Shakti Shri, to ensure the safety of girl students in colleges and universities in the state. Chief Minister Mohan Charan Majhi announced this in Bhubaneswar yesterday. The new program will be implemented in all 16 universities and 730 government and aided colleges coming under the Higher Education Department of the state. The announcement came in the wake of self-immolation of a girl student of FM College in Balasore over alleged harassment by a faculty member recently.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन के महत्व पर जोर देते हुए एक लेख साझा किया है और इसे नशा मुक्त भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने के एक पोस्ट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि डॉ मांडविया ने विस्तार से बताया है कि युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन किस तरह से नशा मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन काशी के पवित्र घाटों पर विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित किया गया था। ये शिखर सम्मेलन मोदी सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य युवाओं के नेतृत्व में कई पहलों के माध्यम से मादक पदार्थों का सेवन समाप्त करना है।
In a boost to local agriculture and entrepreneurship, the first ever mango festival was celebrated at Long Mathra in Kiffaya district of Nagaland yesterday. The festival was initiated by the district administration and the Department of Horticulture, Kiffaya. This festival is confined to the Long Mathra area, covering 13 villages where mangoes are grown very well. Advisor for Home Guard and Civil Defense Services, Relief and Rehabilitation, Kisumyu Himchungar, encouraged farmers to continue mango cultivation beyond the festival and stressed on bringing produce to the markets. He also highlighted the government's commitment in supporting agri activities through modern machinery and other systems.
सिक्किम में पाक्योंग जिला प्रशासन ने कृषि के लिए बंजर भूमि का पुनरुद्धार मिशन के तहत बंजर भूमि पर खेती करने की पहल की है. पिछले 18 महीनों में जिले में 200 एकड़ से अधिक बंजर भूमि पर खेती की जा चुकी है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के निर्देश पर जिला प्रशासन ग्रामीण समुदायों को बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए लगातार प्रेरित कर रहा है. पाक्योंग में इस पहल के तहत बाजरे की खेती को भी बढ़ावा मिला है. स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी से लगभग 25 एकड़ बंजर भूमि बाजरे की खेती की जा रही है. हाल में सामसिंग क्षेत्र में बाजरे की खेती से संबंधित गतिविधियां शुरू की गई हैं. इस पहल में चालू मौसम में 50 से 60 एकड़ अतिरिक्त भूमि पर बाजरे की खेती किए जाने की उम्मीद है. बाजरे के अलावा इस क्षेत्र में मौसमी सब्जियां और फल भी उगाए जा रहे हैं. ग्रामीण अपने सभी उत्पादों को बाजार में बेच रहे हैं. स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले देश के नगरीय निकायों में छत्तीसगढ़ के भी 7 नगरीय निकायों को अलग अलग श्रेणी के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं. प्रदेश की बिल्हा नगर पंचायत को 20,000 से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश में पहला स्थान मिला है. पेश है रायपुर से हमारे संवाददाता विकल्प शुक्ल की ये रिपोर्ट.
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है बिल्हा नगर. स्वच्छता के क्षेत्र में अपने शानदार प्रदर्शन के कारण यह छोटा सा नगर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. 20,000 से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इसे देश में पहला स्थान मिला है. 17 जुलाई को जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल्हा की नगर पंचायत अध्यक्ष वंदना जेंडरे और मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रवीण सिंह गहलोत को यह राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया तो बिल्हा के सभी नागरिकों को गर्व की अनुभूति हुई. बिल्हा नगर पंचायत अध्यक्ष वंदना जेंडरे ने बताया कि बिल्हा को यह उपलब्धि नगर पंचायत के अधिकारियों कर्मचारियों और स्वच्छता मित्रों के साथ ही आम जनता के सहयोग से प्राप्त हुई है.
हमारे जो नगर पंचायत के अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी स्वच्छता को लेकर जागरूक रहते हैं और डोर टू डोर हमारे यहाँ सुबह शाम कलेक्शन होता है कचरे का.
नगर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रवीण सिंह गहलोत ने बताया कि नगर में 100% डोर टू डोर कचरे को इकट्ठा करने के साथ ही इस कचरे के समुचित निपटान पर पूरा जोर दिया जाता है.
100% घरों से हम कचरा को कलेक्ट करते हैं और यही हमारा जो स्वच्छता में अच्छा रैंक लाने का सबसे महत्वपूर्ण हमारा पैरामीटर में हम अच्छा काम किए, इसी में ही हमको ज्यादा अच्छा रैंकिंग मिला है. उसके अलावा हमारे कुछ जीवीपी पॉइंट थे जहाँ पर लोग वर्षों से उनकी आदतें थी और वो कचरा फेंकते थे. लगभग ऐसे 10 जगह हमने चिन्हांकित किया. वहाँ पर हमने जा करके लोगों से निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया, लोगों को समझाया कि भाई आपको घर है, मोहल्ला है, शहर है, यहाँ कचरा ना फेंक करके आप उसको अपने घर में डस्टबिन में रखिए और जैसे ही हमारे स्वच्छता दीदी सुबह आती है उनको कचरे गाड़ी में डालिए करके. लोगों ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया और इसका भी हमको अच्छा प्रतिफल मिला.
स्वच्छता के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन के पीछे बिल्हा की स्वच्छता दीदियों और स्वच्छता मित्रों की भी बड़ी भूमिका रही है और अब जब बिल्हा को यह राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है तो ये भी काफी खुश नजर आ रहे हैं.
नगर पालिका में 6 बजे जाते हैं, अपनी गाड़ियाँ लेके वार्डों में पहुँचते हैं और कलेक्शन कचरा कलेक्ट करके वार्ड से लेके जाके सेंटर पहुँचते हैं. सेंटर में पूरा कचरा भी अलग अलग करते हैं, गीले को अलग स्ट्रीट में डालना, फिर कचरे को अलग करके दबा कर रखना, उसके बाद भी हमें जो है अच्छे से करते हैं. हमारी पूरी टीम अच्छे से काम करती है, हमें ये इनाम लेके बहुत बढ़िया लगा है.
बिल्हा के लोगों का कहना है कि इस राष्ट्रीय पुरस्कार ने उन्हें जहां खुशी दी है वहीं अपने नगर को भविष्य में भी स्वच्छता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ बनाए रखने के लिए प्रेरित किया है. विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर.
Moving on to the world of sports, in women's cricket, England defeated India by 8 wickets in the second ODI at Lord's in London last night to level the 3-match series 1-1. We have a report.
Put into bat first, India posted a target of 144 runs in the rain-curtailed 29-over match. However, due to further rain interruption during England's chase, the target was reduced to 115 runs in 24 overs. As a result, England took the game home in 21 overs. The women in blue had won the first match after defeating host England by 4 wickets in Southampton. The third and final ODI will be played in Chester Leigh Street on Tuesday. On to wrestling, Indian women continue to assert their dominance at the ongoing 4th ranking series Poliak Imre Varga Yano Memorial underway in Budapest, Hungary. Priya Malik demonstrated exceptional skill in the 76-kilogram weight category, winning a silver medal, while Asian champion Manisha added a bronze medal to the tally. Last we have from football, the Junior Boys National Football Championship for Dr. B.C. Roy Trophy 2025-26 is set to begin in Amritsar, Punjab from tomorrow. The opening match will be played between Telangana and Goa at SFS Football Stadium. A total of 16 states and UTs will take part in the 10-day long tournament. Chirag Joy, Sports Desk.
Justin, the cricket match between India champions and Pakistan champions has been called off at the World Championship of Legends WCL 2025. The match was cancelled after organisers faced a major backlash amid India's ongoing tensions with Pakistan due to cross-border terrorism. In a public statement, the WCL League apologised to the fans for hurting their sentiments and the discomfort caused to Indian cricket legends. The match between India and Pakistan was earlier scheduled for today at Edgbaston in Birmingham. Following the cancellation of the match, Edgbaston Stadium announced that all ticket holders will receive a full refund. India has secured 3 gold, 2 silver and 1 bronze medals at the 66th International Mathematical Olympiad IMO 2025 held in Sunshine Coast, Australia. We have more from our correspondent.
Kanav Talwar and Arav Gupta from Delhi and Aditya Mangude from Maharashtra have won the gold medals. Abel George Matthew from Karnataka and Adish Jain from Delhi secured silver medals, while Delhi's Archit Manas secured the bronze. This is only the second time since 1998 that India has won 3 gold medals at the International Mathematical Olympiad. In 2024, India had created history by winning 4 golds. India ranked 7th globally this year, scoring a record 193 out of 252 points, its highest so far. Sanyukta Yadav, Akashwani News, Delhi.
न्यूज मैगजीन आज सवेरे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पर. आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं महानगरों से जुड़ी खबरों की ओर. तो सबसे पहले हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद की खबरें, सुना रही हैं सुभद्रा.
Thank you, Devendra. Starting with news from Chennai, IIT Madras Zanzibar campus in Tanzania held its first ever degree distribution ceremony for M.Tech Data Science and Artificial Intelligence students recently. Students from diverse professional backgrounds completed a rigorous 190-credit curriculum. Of the 16 graduates, some got placements in top companies in Tanzania and India, while some others are interested in pursuing PhDs. Professor Preeti Aghalayam, director of IIT Madras Zanzibar campus, said that the students trained at AI technology will join the global workforce. Tire major CEAT is planning capacity expansion at its Chennai plant that manufactures truck and bus radials and passenger car radials. Kumar Subbaiya, chief financial officer, said that the board had approved an additional 450 crore for capacity expansion of the Chennai plant. The new capacity addition is for PCR tires. Moving on to Bengaluru, Indian Institute of Science in Bengaluru had organized a one-day workshop titled Greenovate 2025 to discuss modern homegrown technologies to tackle critical environment threats. Speaking during the workshop, the former scientist of Karnataka Pollution Control Board, Dr. Bala Gangadhar, urged youth to lead the way in creating sustainable solutions to address the problems caused by waste. He added that public habits must change to maintain cleanliness. Going over to Hyderabad now. In Telangana, the independent expert working group constituted by the state government to study the caste survey was conducted in the state, submitted a comprehensive report on its findings to Chief Minister A. Revanth Reddy. An official release stated that the committee adopted a scientific methodology to find insights into the caste survey data, which will help the government in taking steps for social justice, empowerment and uplift. Devendra, न्यूज फ्रॉम द अदर मेट्रो सिटीज।
जी, सबसे पहले दिल्ली से जुड़ी खबरें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी की सभी प्रमुख सब्जी फल और फूल मंडियों के प्रबंधन, रखरखाव और सुधार को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार मंडियों के कायाकल्प को लेकर बेहद गंभीर है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि इन मंडियों का परिचालन आधुनिक मंडियों की तरह हो और यहां के दुकानदारों, फसल बेचने वालों और आम लोगों को सभी आधुनिक सुविधाएं मिलें। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार किसानों, लघु व्यापारियों और उपभोक्ताओं को एक समृद्ध, सुव्यवस्थित और जिम्मेदार मंडी प्रबंधन प्रणाली प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली सरकार के वन महोत्सव 2025 के तहत पीबीजी ग्राउंड दिल्ली रिज क्षेत्र में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई सर्वोच्च न्यायालय के 20 जजों के साथ कल सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उनके साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में श्री सिरसा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मुख्य न्यायाधीश और जजों की मौजूदगी ये संदेश देती है कि दिल्ली की हरियाली और साफ हवा लौटाने की जिम्मेदारी सभी की है। दिल्ली नगर निगम ने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ 2.0 अभियान के अंतर्गत कल दिल्ली के सिविल लाइन्स के कुदेसिया पार्क में स्वच्छता साइक्लोथॉन और वाकथॉन का आयोजन किया। निगम ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छता और सफाई के प्रति जागरूकता फैलाना और मच्छर जनित रोगों के खिलाफ सामूहिक प्रयास को प्रोत्साहित करना था। और मुंबई चलते हैं। मुंबई का जल भंडार कुल क्षमता के 81% से ऊपर पहुंच गया है, जिससे आने वाले महीनों में पानी की आपूर्ति को लेकर चिंताएं कम हो गई हैं। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग विभाग के अनुसार शहर को पानी की आपूर्ति करने वाली 7 झीलों में अब कुल मिलाकर 11,84,000 मिलियन लीटर पानी है, जो पिछले साल इस समय तक 5,67,000 मिलियन लीटर वाटर रिजर्व था। बीएमसी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि निर्बाध जल आपूर्ति जारी रहेगी, बशर्ते पूरे मॉनसून सीजन में लगातार इसी तरह से बरसात होती रहे। आगामी गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान यात्रियों की संभावित भीड़ को प्रबंधित करने के लिए मध्य और पश्चिमी रेलवे ने कोंकण जाने वाले मार्गों पर कुल 262 विशेष रेलगाड़ियों की घोषणा की है। ये ट्रेनें लोकमान्य तिलक टर्मिनस, दादर, पनवेल, ठाणे और पुणे जैसे प्रमुख टर्मिनलों से चलेंगी। और चलते हैं कोलकाता, जहां पश्चिम बंगाल सरकार रेत खनन के लिए नई नीति लाने की पहल कर रही है। हाल ही में कथित अवैध रेत खनन के मामले सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल खनिज विकास एवं व्यापार निगम लिमिटेड इसकी निगरानी एजेंसियों में प्रमुख होगा। अभिरुचि पत्र पहले से ही अधिसूचित किया जा चुका है। रेत खनन नीति 2021 के नियमों के अनुरूप होगी। नई रेत खनन नीति पर्यावरण का ध्यान रखते हुए और अवैध खनन को रोकते हुए लागू की जाएगी। तो श्रोताओं, ये थी महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें। अब महानगरों के मौसम का हाल भी जान लेते हैं। मॉनसून सीजन चल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आंशिक बादल छा सकते हैं और कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना भी रहेगी। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया, अधिकतम 36 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। उधर मुंबई में भी गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार बने हुए हैं। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 33 डिग्री रहने की संभावना है। कोलकाता में बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा हो सकती है और तापमान 26 और 35 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। सुभद्रा, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में मौसम कैसा रहेगा?
Yes, Devendra, starting with news from Chennai. Chennai is expected to have partly cloudy sky with the possibility of moderate rain or thunderstorm. Minimum temperature was 25 degrees Celsius, maximum will be around 34. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius, maximum will be around 29 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thundershowers. The temperature will hover between a minimum of 23 and a maximum of 32 degrees Celsius.
और आगे बढ़ते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं।
Yes.
तो आइए जानते हैं 20 जुलाई के दिन क्या कुछ इम्पोर्टेंट हुआ जो इतिहास का हिस्सा बना।
Yes, Devendra, sports lovers, today it's the International Chess Day for you guys. Worldwide it is celebrated to honor the establishment of the International Chess Federation, FIDE.
जी, और आज इस खेल के 2000 से ज्यादा प्रचलित रूप हैं। शतरंज जैसा ही एक प्रारंभिक खेल गुप्त काल में 319 से 543 ईस्वी के दौरान खेला जाता था, जिसे चतुरंग कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में उत्पन्न हुआ और रेशम मार्गों के साथ पश्चिम में फारस तक फैल गया। ये खेल फारस पहुंचने पर इस खेल को चतुरंग और बाद में शतरंज नाम दिया गया। माना जाता है कि आधुनिक शतरंज की उत्पत्ति चतुरंग से ही हुई है, जिसका अर्थ होता है चार विभाग।
नाइस, इंटरेस्टिंग। एंड टुडे 20th जुलाई इज आल्सो ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल मून डे, फ्रेंड्स। इट कमेमोरेट्स द डे व्हेन मैन फर्स्ट वॉक्ड ऑन द मून इन 1969।
जी, पहली बार 1969 को आज ही के दिन अपोलो 11 ने इंसान को चांद पर पहुंचाया था। चांद पर उतरने के 6 घंटे बाद अमेरिकी नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर कदम रखा। उन्होंने अंतरिक्षयान के बाहर 2.5 घंटे बिताए। बज एल्ड्रिन भी उनके पीछे पीछे चांद की सतह पर उतरे। कितना रोमांचक दिन रहा होगा सुभद्रा, जब धरती से अलग किसी और ग्रह या उपग्रह पर हम पहुंचे होंगे।
एंड ऑफ कोर्स इन 2021 दिस यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड दिस डे, दैट इज 20 जुलाई, एज इंटरनेशनल मून डे, encouraging people across the world to celebrate the achievement of lunar exploration and to inspire the next generation to look up and dream big.
जी, और अन्य घटनाओं की तरफ हम रुख करते हैं, नजर डालते हैं। तो 1654 में आज ही के दिन ऑंग्ल पुर्तगाल संधि के अंतर्गत पुर्तगाल इंग्लैंड के अधीन हुआ था।
1654 the Anglo Portuguese treaty, I beg your pardon. You've already said that,
yes,
right? Sorry, I didn't check that. The Battle of Ankara, which took place in 1402, was a momentous clash between two powerful empires, the Ottoman Empire and the Timurid Empire. In 1967, the renowned Chilean poet and diplomat Pablo Neruda was honored with the Viareggio Versilia Prize. Neruda's poems and writings had a profound impact on literature and captured the hearts of readers worldwide. And 1905 this day, the first partition of Bengal was announced in London by the Secretary of State of India.
जी, और कुछ पीछे चलते हैं। 1847 में आज ही के दिन जर्मनी के खगोलशास्त्री थियोडोर ने धूमकेतु ब्रोडसेन मेटकाफ की खोज की थी।
And 1976, Viking 1, a NASA spacecraft, successfully landed on Mars this day. It happened in 1976. It was the first spacecraft to achieve a soft landing on the Martian surface and return images.
1903 में आज के दिन फोर्ड मोटर कंपनी ने अपनी पहली कार बाजार में उतारी। फ्रांस ने ट्यूनिशिया को स्वतंत्र देश घोषित किया था और वर्ष 1956 का आज का दिन। और 1761 में माधवराव 20 जुलाई 1761 को प्रथम पेशवा बने थे। और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका जन्मदिन, जयंती और पुण्यतिथि है। इस क्रम में सबसे पहले स्मरण एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी जिनका नाम बटुकेश्वर दत्त था। देश ने सबसे पहले 8 अप्रैल 1929 को उन्हें उस समय जाना जब वे भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट के बाद गिरफ्तार किए गए। उन्होंने आगरा में स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित करने में उल्लेखनीय कार्य किया था। बटुकेश्वर दत्त की भगत सिंह से भेंट 1924 में कानपुर में हुई थी। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए कानपुर में काम करना प्रारंभ किया और इसी क्रम में बम बनाना भी सीखा। तो ऐसे अनेकों वीर थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दी थी।
कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, बोल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन।
आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष साहित्यकारों में से एक बालकृष्ण भट्ट की आज पुण्यतिथि है। उन्हें गद्य प्रधान कविता का जनक माना जाता है। बालकृष्ण भट्ट एक सफल नाटककार, पत्रकार, उपन्यासकार और निबंधकार थे। भट्ट जी ने हिंदी को एक समर्थ शैली प्रदान की। ये पहले ऐसे निबंधकार थे जिन्होंने आत्मपरक शैली का प्रयोग किया था। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान था। अगर उनकी रचनाओं की हम बात करें तो निबंध संग्रह में साहित्य सुमन, भट्ट निबंधावली और उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, नाटक दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन और रेल का टिकट, ये सारे नाटक बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं।
One of the classiest and longest running band in the history of Western music is the British-based Moody Blues. Today, the bassist and co-lead singer of the band, John Lord, celebrates his big day. Besides bass, he plays wonderful rhythm guitar for the band. A sample for you. But birthday of Latin rock maestro, guitar legend Carlos Santana, whose signature sound continues to thrill fans all over the globe. Born in Otlan de Navarro, Mexico, Santana's unique fusion of rock, blues, jazz and Latin influences earned him critical acclaim and worldwide success.
सिनेमा के 50 और 60 के दशक के लोकप्रिय अभिनेताओं में से शुमार राजेंद्र कुमार की बात करते हैं। जुबली कुमार के नाम से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाले राजेंद्र कुमार का जन्म पश्चिम पंजाब के सियालकोट में 20 जुलाई 1929 को हुआ था। एक अभिनेता के तौर पर उनकी पहली फिल्म थी दिलीप कुमार अभिनीत जोगन, उसमें उनका किरदार छोटा था लेकिन सफलता का सफर यहीं से शुरू हुआ। गूंज उठी शहनाई में पहली बार वो एक अभिनेता के तौर पर दिखे। वर्ष 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजेंद्र कुमार का अभिनय आज भी लोगों के जहन में है। उसके बाद धूल का फूल, मेरे महबूब, आई मिलन की बेला, संगम, आरजू और सूरज जैसी कई सफल फिल्मों में उन्होंने सराहनीय अभिनय किया।
महबूब आया है, हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। अजी हमसे बच कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा।
भारतीय फिल्म इतिहास में 70 के दशक में राजेंद्र कुमार सबसे सफल अभिनेता साबित हुए। मोहम्मद रफी राजेंद्र कुमार की पर्दे पर आवाज बन गए थे। ये एक ऐसा वक्त था जब एक साथ उनकी 6 से ज्यादा फिल्में सिल्वर जुबली सप्ताह की सफलता मना रही थी और इसीलिए उन्हें जुबली कुमार कहा गया। 1969 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 12 जुलाई 1999 को कैंसर के कारण मुंबई में राजेंद्र कुमार का निधन हो गया था।
One of the founding members of grunge-turned classic rock band Pearl Jam that originated in Seattle, Stone Gossard turns a year older today. That's 20 July. Of course, he's a songwriter and a rhythm guitarist for this wonderful outfit. A snatch of this beautiful song, Black.
Jeans on empty canvas, untouched sheets of clay.
And friends, songwriter, singer from Hollywood, Los Angeles, Kim Carnes turns 80 years of age today. And of course, this raspy-throated lady singer thrilled the fans way back in the 70s with her chartbuster steeped in pop soul and lots of fun time entertainment. One big hit of hers here is with Betty Davis Eyes. Here goes.
She's got Betty Davis Eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes.
प्रसिद्ध पार्श्व गायिका जिसने अपनी दिलकश आवाज से लगभग 3 दशकों तक करोड़ों श्रोताओं को मदहोश किया। कालजयी फिल्म प्यासा के गीतों को स्वर देने वाली पार्श्व गायिका गीता दत्त की हम बात कर रहे हैं, जिनके पति लोकप्रिय अभिनेता, निर्माता, निर्देशक गुरु दत्त थे। इनका असली नाम था गीता घोष राय चौधरी। 23 नवम्बर 1930 को बांग्लादेश के फरीदपुर में जन्मी गीता दत्त बचपन में ही परिवार के साथ मुंबई पहुंची। गीता दत्त को सबसे पहले वर्ष 1946 में फिल्म भक्त प्रहलाद के लिए गाने का मौका मिला। सुप्रसिद्ध संगीतकार एस डी बर्मन ने गीता दत्त को फिल्म दो भाई में गाने का ऑफर दिया, जिसके गीत मेरा सुंदर सपना बीत गया ने बतौर पार्श्व गायिका गीता दत्त को पहचान दिलाई। उनके कुछ गाने आपको सुनवाते हैं जो कभी न भूले जा सकने वाले गीत हैं।
बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना,
ठंडी हवा काल गता काहे गई झूम के, यार लिए डोले हंसी नाचे
तो आपको लेकर चले हम उस दौर में जब ये आवाजें, ये आवाज, ये गाने लोकप्रिय थे और हर जगह हर तरफ रेडियो पर सुनाई दिया करते थे। इसी गीत के साथ हम चाहेंगे कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की आप सभी से अनुमति।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार।